आज के इस कार्यक्रम में हम आपको नई दिल्ली के उस पठारी इलाके में ले चलते हैं जहां मुद्दत से दो गज जमीन किसी के आने का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है आप हमारे इशारे को समझ ही गए होंगे। वैसे उस मरहूम की रूह से निकले ये शब्द, जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में शायरी में ढाला था, आप सभी श्रोता तो उन्हें पहचान ही जाएंगे। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में। दोस्तों, मैं हूं कुमुद मिरानी और आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे, और हमें उम्मीद है कि कुछ छुई अनछुई बातों को जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आपको पसंद आती होंगी। दिल्ली के हमारे संवाददाता शिवनाथ झा कुछ हफ्ते पहले स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक और कमांडर इन चीफ, भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की महरौली स्थित कब्र पर गए थे। उनके मन में ये ख्याल आया कि किस्मत के आगे किसकी चली है, क्या कोई हकीकत में अपनी मौत से पहले मौत के बाद उनके शव की हालत का अंदाजा लगा सकता है। बहादुर शाह जफर को कुछ ऐसा ही अंदाजा था। आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि जफर को जब अंग्रेजों ने कैद कर रंगून भेज दिया था, उससे पहले ही उन्होंने भारत के दक्षिणी दिल्ली के महरौली पठारी इलाके में अपनी एक कब्र बनवा ली थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका दफन हिंदुस्तान में हो और वो भी दिल्ली में ही हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज भी दो गज जमीन में बनी वो कब्र उनकी रूह का इंतजार कर रही है। वैसे वक्त वक्त पर दिल्ली के संवेदनशील लोगों, कलाकारों, शायरों और दूसरे लोगों द्वारा भारत सरकार का ध्यान इस ओर खींचा जरूर जाता है कि रंगून बर्मा से, जहां मुगल बादशाह को दफनाया गया था, उस कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर महरौली में उनकी ही बनाई गई कब्र में रख कर उसे ढक दिया जाए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। आइए पहले तो आपको सुनवाते हैं अमृत दास गुप्ता साहब की कुछ बातें। अमृत दास गुप्ता साहब बनारस के रहने वाले हैं और अभी 70 वर्ष के हैं, और इनके पिता और दादा, यूं कहें कि सारा परिवार ही स्वतंत्रता संग्राम में जुटा हुआ था। जफर के लिए देखें कि वो क्या कहते हैं।
बनारस का रहने वाला हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 से 1947 तक के पूरे आंदोलन का गवाह रहा है मेरा परिवार। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के अंतिम मुगल सम्राट, एक सूफी, एक संवेदनशील शायर, एक स्नेहमय पिता, बड़े नाजुक दौर में बेखते हिंदुस्तान के सम्राट बने थे। अधिकार इतना सीमित था कि साम्राज्य का अधिकार महज चांदनी चौक से महरौली तक सिमट गया। चाह कर भी कुछ न कर पाने वाले भक्त का मलाल उनकी शायरी में बार बार प्रतिफलित हुई। बारह धोखे का शिकार हुए सिर्फ अपनी सादगी भरे चरित्र के कारण। 1857 के गदर के वक्त उन्होंने अपने साम्राज्य के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अपनी सुख सुविधा से अधिक महत्व देते हुए नायक की जिम्मेदारी भी निभाई। उस टूटते बिखरते हिंदुस्तान को पूरा जोड़ने में वह एकमात्र मजबूत कड़ी थे। परिणत अवस्था का भी चिंता नहीं की उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें गिरफ्तार करने में भी धोखे का सहारा ही लेना पड़ा था। एक पिता की त्रासदी कैसी थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दोनों बेटों का सर कलम कर उन्हें तोहफे में भेजा, तो उस मजबूर पर चरित्र बल से मजबूत पिता ने ईश्वर को ही धन्यवाद देते हुए कहा कि तैमूर वंश के बच्चे इसी प्रकार अपने पिता के सामने आते हैं। न्याय के नाम पर भी अंग्रेजों ने उनके साथ असामान्य अन्याय किया था। मुगल वंश का यह अंतिम शासक चाहता तो समझौता कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। अंग्रेजों के कैदी के रूप में ही जीवन त्यागा। कैसी विडम्बना थी उस बादशाह की, इसे अपने मुल्क में दफन के लिए जगह न मिल पाई, जबकि इच्छा थी महरौली में उन्हें दफन किया जा सके। उन्होंने अपने कब्र की जगह भी बहादुर शाह एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी असलियत से तथा हालात से पूरी तरह वाकिफ थे। वे जानते थे कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई में अगर हारते हैं तो मौत ही उनकी किस्मत में है, अगर जीतते भी है जिसकी उम्मीद नहीं के बराबर थी तो साम्राज्य से बेदखल होने का पूरा डर था, क्योंकि उस क्रांति में असंख्य शक्तिशाली क्षत्र शामिल थे। इसके उपरांत भी मुल्क की एकता के लिए वह अपनी आयु की परवाह किए बगैर गदर का नेतृत्व करना सही समझा। बहादुर शाह जफर को अगर हिंदुस्तान का प्रथम राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी कहूं तो मुझे जरा भी संकोच नहीं है। वो बाबर के उत्तराधिकारी भी थे, वो तैमूर वंश के वंशज भी थे जो मूलतः विदेशी थे, पर हिंदुस्तान को ही अपना वतन बारह कहा, अपनी शायरी में लिखा और दिल से माना। अपने वतन की मिट्टी से मिलने को तरसता वह बादशाह आज भी अपने वतन वापस आने को तरस रहा है। मेरी भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील है कि रंगून स्थित उनकी समाधि को हिंदुस्तान लाया जाए ससम्मान और उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। इतिहास गवाह है कि मुगल साम्राज्य में बादशाह कुल में ऐसी कब्रें स्थानांतरित हुई थी। बादशाह जफर के अवशेष को हिंदुस्तान की सरजमी पर वापस लाना हिंदुस्तान की बिखरती गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने के लिए एक अहम कदम साबित होगा। आज तकनीक जितनी विकसित हो चुकी है उसके इस्तेमाल से उनका पूरा कब्र अवश्य ही स्थानांतरित किया जा सकता है, अन्यथा प्रतीकात्मक रूप से भी किया जाना हिंदुस्तान की एकता की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा।
तो ये थे अमृत दासगुप्ता साहब और आप सुन रहे हैं SBS रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं आखिरीन मुगल बहादुर शाह जफर की खबर के बारे में कुछ बातें। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। वो अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद 28 सितंबर 1838 को दिल्ली के बादशाह बने थे। शाही तख्त पर बैठने के बाद उन्हें अबू जफर सिराजुद्दीन बहादुर शाह गाजी का खिताब दिया गया था। उनकी माँ ललबाई हिंदू परिवार की थीं। जफर शायर के तौर पर उनका उपनाम था, तखल्लुस था उनका। उन्हें उर्दू, अरबी और फारसी की अच्छी शिक्षा मिली थी, अच्छी तालीम मिली थी। इतना ही नहीं, वो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने में भी माहिर थे। ये भी कहा जाता है कि जफर सूफीवाद के और फारसी जबान के भी बड़े ही विद्वान थे और वो कातिब भी बड़े अच्छे थे, यानी सुलेखन उनका, राइटिंग भी उनकी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर शायर भी थे। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उनकी शायरी के उस्ताद हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर ने कई मशहूर उर्दू गजलें लिखी हैं, जिनमें से काफी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के वक्त मची उथल पुथल के दौरान खो गई थीं या फिर नष्ट हो गई थीं। उनका ये शेर भी बड़ा मशहूर हुआ कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक चमकेगी तेगे हिंदुस्तान की। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू शायरी का जलवा जारी ही रहा। वहां उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र खाई जाती थी। उनकी आखिरीन ख्वाहिश थी कि वो अपने जीवन की आखिरीन सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं वो दफनाए जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देखकर बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर दिया। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। शुरुआत में तो हिंदुस्तान के लड़ाकू मजबूत हो रहे थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते पहले स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں شرن لے لی، لیکن میجر ہڈسن نے انہیں ان کے بیٹے مرزا مغل اور خزر سلطان اور پوتے ابو بغر کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ انگریزوں نے ظلم کی سبھی حدیں پار کر دی تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کو بھوک لگی تو انگریز ان کے سامنے تھالی میں پروس کر ان کے بیٹوں کے سر لے آئے۔ انہوں نے انگریزوں کو جواب دیا کہ ہندوستان کے بیٹے دیش کے لیے سر قربان کر کے اپنے باپ کے پاس اسی انداز میں آیا کرتے ہیں۔ آزادی کے لیے ہوئی بغاوت کو پوری طرح ختم کرنے کے مقصد سے انگریزوں نے آخرین مغل بادشاہ کو دیش سے نکال کر رنگون بھیج دیا، اور اس دوران ظفر نے جو غزلیں لکھیں وہ گائی بھی گئی ہیں، اور جذبات کی شدت کے لیے اردو کے ادب میں اور ہندی میں بھی آج بھی ان کی ایک خاص جگہ ہے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ظفر نے کئی شادیاں کی تھیں اور سبھی بیگموں اور خنیزوں کو پوری پوری عزت بھی دی تھی۔ ان کی سب سے پسندیدہ بیگم تھی زینت محل، اور زینت محل بدقسمتی کے دنوں میں بھی ان کے ساتھ ہی رہیں۔ آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش سرکار انہیں صرف ایک پینشن کمانے والا نام ماتر کا شاسک سمجھتی تھی، جو ہر ماہ 1,00,000 روپے کے وظیفے کا حقدار تھا اور جس کی حکومت لال قلعے کی چار دیواری تک ہی سیمت رہ گئی۔ ملک سے انگریزوں کو بھگانے کا خواب لیے 7 نومبر 1862 کو 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں رنگون میں شویرگون پیگوڈا کے نزدیک دفنایا گیا۔ ان کے دفن کی جگہ کو اب بہادر شاہ ظفر درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔